This is London. You will now hear a statement by the Prime Minister.
I am speaking to you from the Cabinet Room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin...
3 सितंबर 1939 को ब्रिटानी प्रधानमंत्री नेवेल चैम्बरलेन ने बीबीसी रेडियो पर जर्मनी के साथ युद्ध की घोषणा की.
This country is at war with Germany.
ये दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत थी. हिटलर और मुसोलिनी यूरोप को रौंदे डाल रहे थे.
20 milioni a un cuore solo, una volontà sola, una decisione sola.
और जब ये जंग दुनिया को थरथरा रही थी, उस वक्त हिंदुस्तान से एक नौजवान बीबीसी हिंदी रेडियो में काम करने के लिए लंदन रवाना हुआ. ये थे बलराज साहनी, जो बाद में हिंदी सिनेमा के मशहूर एक्टर बने.
मैंने अपने बच्चों का नसीब अपने हाथ से लिखना चाहा था. किस्मत ने वो तमाचा मारा मेरे मुंह पे, तिनका तिनका करके बखेर दिया सब. आज इन्हीं बिखरे हुए तिनकों को फिर से इकट्ठा करने निकला, और वक्त इतना गुजर चुका है, अगर मेरे बेटे मेरे सामने भी खड़े हों तो मैं उन्हें पहचान ना सकूं.
अफसोस कि बलराज साहनी के रेडियो प्रसारण का कोई टेप हमारे पास उपलब्ध नहीं है, पर उनके बेटे और 70-80 के दशक में सिने कलाकार रहे परीक्षित साहनी के पास अपने पिता की यादें सुरक्षित हैं।
बीबीसी के हिंदी श्रोताओं को मेरी तरफ से सबसे पहले नमस्कार, और बहुत खुशी की बात है कि जिस बीबीसी से हमारे पिताजी ने कितने 50-60-70 साल पहले काम किया था, उस पर आज मेरी नशरियात हो रही है. दैट्स वंडरफुल. सबको बहुत बहुत नमस्कार.
परीक्षित साहनी बताते हैं कि किन हालात में बलराज साहनी हिंदुस्तान से लंदन रवाना हुए.
बीबीसी के लिए उस जमाने में रवाना हुए जब दूसरा महायुद्ध चल रहा था, और खबरें आ रही थी कि जर्मन यू बोट्स वगैरह ब्रिटिश कॉन्वॉयज को बॉम्ब कर रहे हैं, उन्हें डुबो रहे हैं. लंदन तो वैसे भी वो जाना चाहते थे, और जब रवाना हुए तो मेरे दादा और दादी जी और खासतौर से भीष्म जी, उनके पिताजी के भाई साहब, उन्होंने कहा यार तू ऐसा मत कर, ये छोटा सा बच्चा है, इसको तू ले जा रहा है तो वो रास्ते में अगर कुछ हादसा हो गया तो ये भी बेचारा डूब जाएगा, या वहाँ बम वम फट सकते हैं, जो कि वहाँ एक्चुअली फटे उस जमाने में.
ये वो जमाना था जब ब्रिटिश राज का सूरज अभी डूबा नहीं था, पर ढलान पर जरूर था. मगर बीबीसी हिंदी सेवा खबरों के विश्वसनीय जरिए के तौर पर स्थापित हो रही थी. परीक्षित साहनी के पास उन दिनों की धुंधली यादें बची हुई हैं.
मुझे याद है, बहुत धुंधली सी याद है वो, कि हमारे पूरा परिवार रेडियो के सामने बैठ जाया करता था शाम के वक्त खास तौर से, और सब बीबीसी लगा के हमारी माताजी दमयंती साहनी साहिबा और बलराज साहनी साहब के ही नशरियात सुना करते थे. अब मुझे तो कुछ याद नहीं, मगर ये याद है कि सब कहा करते थे बड़े फख्र से, बड़े गर्व से, कि तुम्हारे ये पिताजी की आवाज है, तुम्हारे माताजी की आवाज है.
आपने उस धुंधली सी याद का तो जिक्र किया जब पूरा परिवार रेडियो के सामने बैठता था शाम को, और बलराज जी की आवाज सुन के बड़ा फख्र महसूस होता था सभी को. लेकिन जब आप बड़े हुए और बलराज जी लौट के आ गए, क्या कभी आपको उन्होंने अपना लंदन प्रवास जो था उसके बारे में, या बीबीसी के बारे में कुछ किस्से, कुछ कहानियां, या कुछ चर्चा कभी होती थी?
जी बिल्कुल, उन्होंने बड़े तफसील से जिक्र किया. जब हम खास तौर से छुट्टियों पे जाया करते थे कश्मीर, या यहाँ अपना कश्मीर में हमारा बंगला है, तो वहाँ वो मुझे बताया करते थे कि उनको बीबीसी से तो यही सबसे बड़ा फायदा हुआ कि वहाँ पे बड़े बड़े दूसरे कलाकार काम किया करते थे, जैसे कि सर जॉन गिलगुड बीबीसी पे नशरियात करते थे, फिर जैसे कि जॉर्ज ऑवेल, सर लॉरेंस ओलिविए, बड़े बड़े उस जमाने के जो बेहतरीन आर्टिस्ट थे, उनसे मुलाकात होती रही थी.
बीबीसी से जुड़कर गर्व करने वालों में बलराज साहनी और उनका परिवार ही नहीं था, कई दूसरी नामी गिरामी हस्तियों ने बीबीसी की खबरों पर भरोसा किया. भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल तो एक जमाने में बीबीसी हिंदी सेवा के लिए विश्लेषक के तौर पर जुड़े भी रहे थे। हिंदी सेवा के 60 साल पूरे होने पर इंदर कुमार गुजराल ने याद किया उन दिनों को जब वो मॉस्को में भारत के राजदूत थे।
जो सोवियत यूनियन का रेडियो था उसके मुतालिक लोगों को विश्वास कम था और इसलिए बीबीसी के ऊपर सबको निर्भर रहना पड़ता था। दो तीन खबरें मुझे याद आती हैं। एक खबर तो ये कि सबसे पहली जब हमारे यहाँ संजय जी की मृत्यु हुई थी तो हिंदुस्तान के टेलीफोन आने से पहले बीबीसी ने खबर दे दी थी कि उनका एक्सीडेंट हो गया है इस तरह और उनकी मृत्यु हो गई। एक तो मुझे वो खबर याद रहती है। दूसरी बात जो मुझे याद रहती है पिछले 60 वर्षों के, वो खासकर उन दिनों जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था और आज़ादी के दौरान में जिस किस्म के फसादात थे उसके मुतल्लिक एक खास खबर जो इनकी तरफ से आती थी वो बड़ी विश्वासजनक होती थी। बीबीसी की खबरें खासकर लड़ाई के दौरान में जब हिंदुस्तान और बांग्लादेश का जब विवाद शुरू हुआ था, बांग्लादेश आज़ाद हो रहा था, उस वक्त भी सुनने वालों की नज़र में बीबीसी की खबर में बहुत विश्वास था, यहाँ भी और पाकिस्तान में भी।
बांग्लादेश की लड़ाई हो या फिर जून 1975 में लगाई गई इमरजेंसी, बीबीसी ने कभी अपनी विश्वसनीयता पर आंच नहीं आने दी। सरकार ने आपातकाल में अखबारों पर सेंसर लगा दिया था, पत्रकारों को आजादी से काम करने की छूट नहीं थी। उस दौर में जिन पत्रकारों के कारण हिंदी सेवा की विश्वसनीयता बनी रही उनमें थे सतीश जेकब और मार्क टली।
इमरजेंसी के जमानों में जब किसी को ठीक मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है देश में, क्योंकि प्रेस में सेंसरशिप था, इसलिए अखबार में असली खबर नहीं पढ़ सकता था और इंडिया रेडियो पर नहीं पढ़ सकता था। सिर्फ बीबीसी थे जो कोशिश की थी असली खबर, सच खबर को बेचने के लिए। और बार बार जब मैंने गांव गया, मैंने लोगों से, गांव वालों से पूछ लिया कि आप क्यों बीबीसी को सुनते हैं, वो हमेशा एक ही जवाब दिया, हम बीबीसी सुनते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि ये सबसे पहले खबर दे रहा है और सच खबर दे रहा है।
सच खबर देने की कीमत मार्क टली को चुकानी पड़ी।
विद्याचरण शुक्ला जो सूचना मंत्री था उस जमाने में, उसने कहा था कि अगर आप एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं करता है और इस एग्रीमेंट के वजह के मुताबिक से आपको सिर्फ सरकारी खबर पेश करना है, आप इस देश से भागो। सो मैंने कहा कि मैं इस डॉक्यूमेंट पर दस्तखत नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बीबीसी की आदत नहीं है कि वो सरकारी खबर पेश करता है। सो एक दिन एक आदमी, एक फॉरेन ऑफिसर के अधिकार मुझसे बात की थी टेलीफोन पर, बोला कि अंग्रेजी में बोला कि मार्क, आई एम वेरी सॉरी टू टेल यू बट यू मस्ट लीव द कंट्री विद इन 24 आवर्स। सो 24 घंटे के अंदर मैंने भारत छोड़ दिया।
इसके बाद भारत में मार्क टली और बीबीसी एक दूसरे के पर्याय बन गए। हालांकि उन्होंने 1994 में बीबीसी छोड़ दी थी, पर आज भी हिंदुस्तान के पुराने श्रोता मार्क टली को बीबीसी से जोड़कर ही देखते हैं। इस बात पर मार्क ठहाका लगाकर हंसते हैं।
एक 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 जैसा खतरा था कि जब आप गांव जाता है लोग उतना खुश है आपसे मिलने के लिए कि हो सकता था कि आप थोड़ा से घमंड हो जाएगा। मेरी उम्मीद है कि मैं घमंड नहीं हूँ,
बिल्कुल नहीं हुआ है मार्क साहब,
बिल्कुल मेरी उम्मीद है। नहीं नहीं, बार बार जहाँ आप किया था, एक एक अच्छी बात हुई थी हमको। मैं एक दूसरे जर्नलिस्ट साहिद नकवी साहब के साथ था
जी,
यूपी में गांव गांव जाता है, एक गांव पहुंच गया और नकवी साहब गांव वाला से पूछ लिया कि तो क्या परिणाम होगा चुनाव, होने वाला चुनाव में। उस आदमी उसको देख लिया, बोला कि देखो अब ऐसा है कि अभी तक मैं बीबीसी नहीं सुना इसलिए मैं आपको नहीं बोल
नहीं
सकता।
अच्छा,
कौन जीतेगा?
और आप वही मौजूद थे?
मैं मौजूद था।
मार्क टली जैसे पत्रकारों ने बीबीसी की विश्वसनीयता को मजबूत बनाया। उसके कारण महेश भट्ट और श्याम बेनेगल जैसे बड़े फिल्मकार भी बीबीसी हिंदी सर्विस पर भरोसा करने लगे। श्याम बेनेगल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो बीबीसी क्यों सुनते हैं।
न्यूज के हिसाब से एक क्रेडिबिलिटी बीबीसी का तो है शुरू से ही, तो वो क्रेडिबिलिटी की वजह से कोई भी न्यूज, अगर कोई अर्थ शैटरिंग न्यूज हो या कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज हो तो पहले तो हम लोग बीबीसी को ही सुनते हैं।
अक्सर इस बात का जिक्र हो जाता है कि इंदिरा गांधी की हत्या की खबर सबसे पहले बीबीसी हिंदी रेडियो पर आई थी। 31 अक्टूबर 1984 का वो दिन मार्कटली अब भी याद करते हैं।
मैं देहरादून में था, मसूरी में था उस उसी दिन पर। वहाँ पर प्रिंसेस एन थी और हम प्रिंसेस एन के बारे में रिपोर्ट भेजती थी। सो जब मैंने खबर मिल गया कि इंदिरा गांधी के हत्यार हो गया, मैं घरे में जितना जल्दी आ सकते थे मैं दिल्ली को वापस आया। और जब हम मुजफ्फरनगर पहुंच गया, वहाँ तनाव बहुत बड़ा था और हम बड़े मुश्किल से पार किया और लोग ने नारे लगा हमारे खिलाफ, बोला कि सोचते थे कि मैं अमेरिकन था, सब बोला कि अमेरिका ने इंदिरा गांधी का हत्या किया, ऐसे वैसे नारे लगा। हम बहुत मुश्किल से पहुंच गया और तब तो मैं शाम को निजामुद्दीन जहाँ बीबीसी का दफ्तर था पहुंचा।
फिल्मकार महेश भट्ट ने भी याद किया कि उस शाम इंदिरा गांधी की हत्या की खबर उन्हें बीबीसी हिंदी रेडियो से ही मिली।
जब मिसेस गांधी का असैसिनेशन हुआ था और दिल्ली में वो एंटी सिख की जो एक हेट वेव चली थी, तो उसकी जो खबरें हमें, मुझे याद है कि मैं नैनीताल में था और मुझे वहां पर बीबीसी हिंदी सर्विस के जरिए ही ये न्यूज मैंने प्राप्त की। तो मेरे दिमाग दिलो दिमाग पर वो आवाज, वो जो फेस था हिंदुस्तान का, वो कहीं पर वो मेरे दिल दिमाग में जाके बैठ गया है। और मुझे लगता है कि हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमारे बीच आज भी ये सर्विस मौजूद है।
रेडियो पर बीबीसी सुनने का चस्का दरअसल पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। महेश भट्टी नहीं, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी भी लगभग बचपन से बीबीसी रेडियो सुनती आ रही हैं।
स्कूल के टाइम से।
अच्छा।
स्कूल गर्ल थी और मेरे पिताजी रेडियो बीबीसी मुझे सुनवाते थे। कोई टेलीविजन नहीं होता था ना दोनों में, तो हम लोग रेडियो बीबीसी सुनते थे और रेडियो हिंदी बीबीसी तो मॉर्निंग टाइम मेरे लिए। और आजकल की धुन मुझे अभी भी याद है।
अच्छा, वो धुन आपके कानों में है जी।
आजकल चलता था, याद है?
वाह, क्या बात
तो
है।
सुबह का टाइम, फिर 7 बजे का मुझे बड़ा सूट करता था क्योंकि तब वो टेलीविजन आपको डाइवर्ट नहीं करता था ना।
आपने तो, आजकल की बात कही है तो आइए अपने श्रोताओं को वो सुनाते हैं, वो धुन क्या थी।
आजकल
ये धुन 70 और 80 के दशक में बीबीसी सुनने वालों की स्मृति से मिट नहीं सकती। उर्दू के मशहूर लेखक और आलोचक गोपी चंद नारंग उस दौर में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस के लंदन दफ्तर यानी बुश हाउस आते जाते रहते थे।
70 और 80 के बाद मेरी मुलाकातें होती रहीं। वहाँ रमा पांडे से अचला शर्मा थी और उर्दू में रजाली आब्दी थे और कैसे कैसे लोग थे। वो सूरते इलाही किस देश बस्तियां हैं, अब देखने को जिनके आंखें तरसतियां हैं।
क्या बात है, क्या बात
है। और बुश हाउस में ऐसी ऐसी दोस्तियां थी और जो जोशी जी मैं क्या अर्ज करूं, जो शख्सियतें थी वो अपनी भाषा पर गर्व करती थी।
बीबीसी लंदन में जिसने भी काम किया उसको लगा कि बुश हाउस में अपना सा, अपने घर सा कुछ है। वहां दुनिया की तमाम भाषाएं बोलने वाले, तमाम देशों से बीबीसी में काम करने लंदन आए लोग मिलते थे। अरबी और फारसी, तुर्की और स्पानी, पुर्तगाली और चीनी, कोरियाई और रूसी, कौन सी ऐसी भाषा है जिसे आप बुश हाउस में नहीं सुन सकते थे।
बीबीसी नेपाली सेवा को सांसद पक्ष कार्यक्रम नवीन
की राजधानी मनीला की एक।
इन भाषाओं को जतन के साथ बरतने वाले लेखक, बड़े बड़े साहित्यकार और शायर उस दौर में बुश हाउस आया जाया करते थे। ऐसी ही एक शख्सियत थे फैज अहमद फैज।
ठहर गई आसमां की नदियां, वो जा लगी है उफक किनारे, उदास रंगों की चांद नैया, उतर गए साहिल जमीन पर सभी खवैया तमाम तारे।
जिया मोहिउद्दीन की गहरी आवाज में फैज की शायरी की चंद पंक्तियां। उर्दू शायरी के आसमान में दमकने वाले फैज अहमद फैज नाम के इस सुर्ख सितारे से अपनी पहली मुलाकात को गोपी चंद नारंग यूं याद करते हैं।
तो मेरी पहली मुलाकात फैज से बुश हाउस के क्लब में हुई है, और ऊपर ये गोल सी इमारत थी, बड़ी खूबसूरत, एक समझे कि बड़ी असेंबली हुई ओरिएंटल किस्म की। उसमें हमें ऐसा मालूम होता था हमारा अपना घर है, हिंदी का अपना घर है।
पर दुनिया उस दौर से काफी बदल चुकी है। दुनिया बदली तो बीबीसी में भी बदलाव आए, मगर जैसा कि कहावत है, पुरानी आदतें दरअसल बदलती नहीं। अंग्रेजी के मशहूर उपन्यास अ सूटेबल बॉय के लेखक विक्रम सेठ बीबीसी हिंदी रेडियो के पुराने श्रोता हैं। इन दिनों वो एक उपन्यास लिखने में गहराई से डूबे हुए हैं। उनसे इंटरव्यू तो संभव नहीं हुआ, मगर उन्होंने एक ईमेल के जरिए अपनी बात हम तक पहुंचाई।
प्रिय राजेश, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं इस वक्त अपने उपन्यास में गहरा उतर चुका हूं। मेरे प्रकाशकों ने एक कविता संग्रह के लिए मुझसे कुछ पब्लिसिटी करवाई, जिसके कारण लगभग एक महीने तक मुझे उपन्यास पर काम करने की प्रेरणा ही नहीं रही। पर सौभाग्यवश अब वो स्थिति नहीं है और मैं फिर से अपने चरित्रों में डूबा हुआ हूं। ईमेल लिखने के लिए क्षमा मांगने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा संदेशा पाकर अच्छा लगा। जैसा कि तुम जानते हो, मैं बीबीसी हिंदी का बड़ा प्रशंसक हूं। बात इतनी सी है कि इस वक्त मुझे हर गुजारिश को नकारना पड़ रहा है, वरना मेरी विचार की देवी रूठ जाएगी और मुमकिन है कि शायद गायब भी हो जाए। सादर, विक्रम सेठ।
आप और हम जब बीबीसी हिंदी रेडियो के 75 वर्ष मना रहे हैं, हमारी उम्मीद है कि विचारों की देवी हमेशा आप पर और हम पर मुस्कुराती रहेगी और हमारा साथ यूं ही बना रहेगा।
बीबीसी नेपाली सेवा को सांसद पक्का कार्यक्रम बाट नवीन
सिंह की राजधानी मनीला की एक
फैक्ट्री
नो खराश तमन अफगान हम दुबई असरी और सुदई जुआ।